आहान ने चाहत की मां निशा को अंतिम क्रिया से पहले मिस्टर रवि के घर पहुंचा दिया था। वो चाहत के पास हॉस्पिटल में था, तभी उसके पास उसके हेडगार्ड का फोन आया। शिवानी को होश आ चुका था। आहान चाहत को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन नर्स ने बताया कि चाहत सुबह तक उठेगी, इसलिए कुछ देर तक चाहत को नर्स के हवाले करके आहान वहां से अपनी मां शिवानी से मिलने चला गया। वहीं आहान के जाते ही एक आदमी मास्क में बाहर निकल कर आया। वो आहान के बाहर जाने का ही वेट कर रहा था। उसी ने चाहत की मां निशा को मारा था और अब उसका अगला निशाना चाहत थी। आहान की गैर मौजूदगी में वो शख्स वार्ड बॉय के कपड़े पहनकर और मास्क लगाकर चाहत के रूम में गया। रूम में आते ही वो चाहत की ड्रिप चेंज करने का बहाना बनाकर वहां रुक गया। वहीं उसे वहां देखकर उसके पास मौजूद नर्स ने कहा, मैं 5 मिनट में आती हूं, तब तक तुम इनका ध्यान रखना। ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी तो मेरी कंप्लेंट मत करना, हम नर्सेस को भी रेस्ट की जरूरत होती है। नर्स के बोलने का लहजा सख्त था। उस आदमी ने उसकी बात पर हामी भरी और वहां चाहत के पास रुक गया। नर्स के जाते ही वो चाहत के कान के पास झुका और धीरे से कहा, तुम्हारी माँ को मारकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। बहुत सालों बाद देखा उसे। जब पिछली बार देखा था तब वो काफी जवान और खूबसूरत थी, लेकिन अब तो उसकी हालत काफी खराब हो गई है। तुम अपनी माँ जैसी नहीं लगती हो, तभी उससे ज्यादा खूबसूरत हो। पर क्या फायदा इस खूबसूरती और साफ दिल का, जब तुम दोनों को ही इस दुनिया से जाना पड़ेगा। बोलते हुए उस आदमी ने अपने पॉकेट से एक इंजेक्शन निकाला। वो उसे चाहत के अंदर इंजेक्ट करने ही वाला था कि तभी उसे दरवाजे पर किसी के चिल्लाने की आवाज आई। जहां हो वहीं रुक जाओ और उसे कुछ मत करना। आई वॉर्न यू, अगर उसे एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये आहान था। उसका चाहत को अकेले छोड़ने का दिल नहीं मान रहा था, इसलिए वो वापस आ गया था। आहान को वहां देखते ही उस आदमी के हाथ पैर ठंडे होने लगे। उसके हाथ से वो इंजेक्शन छूटकर नीचे गिर गया। वो गुस्से में उस आदमी की तरफ बढ़ रहा था, तभी उसने तेजी दिखाई और आहान को धकेलकर बाहर भाग गया। आहान ने उसके पीछे भागकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में वो उसकी आंखों के सामने से उछल हो गया। आहान चाहत को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो वापस उसके रूम में आ गया। चाहत अभी भी इन सब से बेखबर सुकून से सोई हुई थी। आहान चाहत के पास आया और उसे गौर से देखने लगा। चाहत बिल्कुल ठीक थी, तो आहान ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, आई एम सो सॉरी डॉल, आज मेरी वजह से तुम्हारी जान चली जाती। पर वो आदमी कौन था और तुम्हें क्यों मारना चाहता था? जहां तक मैं जानता हूं, तुम एक बहुत ही सिंपल सी लड़की हो, फिर तुम्हें मारकर किसी को क्या ही मिलेगा। आहान वहां हैरानी से खड़ा चाहत से बात कर रहा था, तभी नर्स रूम में वापस आ गई थी। उसे देखते ही आहान गुस्से में उस पर चिल्लाया, कहां थी तुम और अपने पीछे किसे छोड़कर गई थी? तुम्हारी वजह से आज मेरी डॉल को कुछ हो जाता तो मैं एक एक की जान ले लेता। मैं आहान की बातों से नर्स समझ गई थी कि जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से चाहत के ऊपर खतरा आया था। उसने नजरें झुकाकर कहा, आई एम सॉरी सर, मुझे लगा वो हमारे स्टाफ का ही है। हम लोग ऐसे काफी बार रेस्ट रूम यूज करने के लिए अपने पीछे से ड्यूटी एक्सचेंज करते हैं। अब एक पल के लिए भी यहाँ से उठना मत, मुझे उस आदमी को पकड़ना जरूरी है। आहान ने नर्स को वहीं पर छोड़ा और फिर हॉस्पिटल के मैनेजिंग स्टाफ के पास गया। वहां जाकर उसने हंगामा मचा दिया था, क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से बात आज चाहत की जान पर बनाई थी। मैनेजिंग स्टाफ के हेड ने उसे समझाते हुए कहा, वी नो सर, हमसे लापरवाही हुई है। हम प्रॉमिस करते हैं कि हम मिस चाहत का पूरा ध्यान रखेंगे। आप मेरे साथ चलिए, हम CCTV कैमरा से देख सकते हैं वो आदमी कौन था। वो आहान के साथ काफी अच्छे से कॉपरेट कर रहा था, क्योंकि वो आहान ओबेरॉय को जानता था। वो कोई आम आदमी नहीं था, उसका नाम इंडिया के टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में था। उसका वहां हॉस्पिटल में होना ही बहुत बड़ी बात थी। बात मीडिया में या बाहर ना चली जाए, इसलिए वो बिना किसी शिकायत के आहान को CCTV कंट्रोल रूम में लेकर गया। वहां उन्होंने फुटेज देखी तो उन्हें वो आदमी दिखाई जरूर दिया, लेकिन उसने पूरे टाइम मास्क पहन रखा था। फुटेज में उस आदमी को देखकर आहान गुस्से में उस पर चिल्लाया, तुम्हारे हॉस्पिटल में खुलेआम कातिल घूम रहे हैं और तुम्हें पता तक नहीं है? मैं अपनी डॉल को अब 1 मिनट भी यहां पर नहीं रखूंगा, मुझे अभी के अभी उसका डिस्चार्ज चाहिए। आहान को अब किसी पर भरोसा नहीं था। उसने तुरंत चाहत के डिस्चार्ज पेपर्स बनवाए और उसे लेकर अपने घर गया। उसने साथ में 2 नर्स को भी हायर किया था ताकि वो चाहत की देखभाल कर सके। आहान चाहत को लेकर घर आ गया था और उसने अपनी मॉम की सिक्योरिटी भी अच्छे से संभाल रखी थी। वो पूरे टाइम उनके साथ कॉल पर था। अगली सुबह निशा के अंतिम संस्कार की क्रियाएं करनी थी, जो मिस्टर रवि के घर से हो रही थी। निशा के कोई रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन श्रद्धा के फैमिली मेंबर्स और मिस्टर रवि के घर वाले वहीं पर मौजूद थे। वहां पर अगर कोई नहीं था तो वो थी चाहत। चाहत नींद से उठ गई थी और उसे अपनी मम्मा की मौत का याद भी था। वो बस बिना रोए चुपचाप एक कोने में देख रही थी। आहान उसकी हालत अच्छे से समझ सकता था, लेकिन उसे निशा के अंतिम संस्कार के लिए भी लेकर जाना जरूरी था। वो चाहत के लिए एक व्हाइट कलर का सूट लेकर आया और चाहत को देते हुए कहा, चेंज कर लो डॉल, तुम्हारी मम्मा को हमें खुशी खुशी विदा करना है। वो वापस लौट कर नहीं आएंगी, लेकिन जहां भी गई हैं वहां से यही चाहेंगी कि तुम खुश रहो। कपड़े बदल लो, हमें मिस्टर रवि के घर जाना है। मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है आहान, चाहत ने आहान की तरफ देखे बिना कहा। अभी भी वो दीवार की तरफ बिना पलके झपकाए देख रही थी। आहान चाहत के पास आया और उसके कपड़े बदलने लगा। चाहत ने एक बार भी उसे ऐसा करने के लिए मना नहीं किया। चाहत को सूट पहनाने के बाद आहान ने उसके बालों में रबर बैंड डाला और फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर नीचे ले जाने लगा। तुम्हें सच को एक्सेप्ट करना होगा डॉल, जानता हूँ थोड़ा टाइम लगेगा, पर इतना टाइम भी नहीं लेना है कि तुम खुद को ही खो दो। बोलते हुए आहान ने चाहत को गाड़ी में बिठाया और फिर मिस्टर रवि के घर जाने के लिए निकल गया। चाहत बिल्कुल किसी रोबोट की तरह बर्ताव कर रही थी। पूरे रास्ते वो चुप रही। निशा के जाने के बाद उसकी दुनिया खत्म सी हो गई थी। मिस्टर रवि के घर पर आते ही आहान ने चाहत से कहा, आगे तुम्हें खुद ही जाना होगा। चाहत ने कोई जवाब नहीं दिया और दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। आहान भी उसके पीछे था। वहां लेट आने की वजह से कुछ औरतें चाहत के बारे में कानाफूसी कर रही थी। चाहत के कानों में उनकी बातें अच्छे से पड़ रही थी। वो चाहत के लेट आने और ऊपर से आहान के साथ आने की वजह से उसे जज कर रही थी, पर चाहत ने सफाई देना तो दूर उनकी तरफ देखा तक नहीं। निशा का अंतिम संस्कार आहान ने ही किया था। निशा के अंतिम संस्कार के बाद आहान चाहत को फिर से मिस्टर रवि के घर ले आया था। निशा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उसके मामा मामी भी आए हुए थे। वो पार्वती जी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे, इसलिए घर आने के बाद वो तुरंत वहां से जाने को हुए। आहान ने उसके मामा की तरफ सर निगाहों से देखा और उसे अकेले में बुलाया। जो लोग अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भागते हैं वो जिंदगी में कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाते। सुना है तुम अपनी माँ को अपने साथ नहीं रखना चाहते, अपनी बहन के साथ भी बहुत बुरा बर्ताव किया था। जब निशा माँ का डाइवोर्स हुआ था तब आपने चाहत और उन्हें अपने साथ रखने से मना कर दिया था।
आहान के कपड़ों और एटीट्यूड से चाहत का मामा समझ गया था कि वो कोई आम इंसान नहीं है। उसके मामा ने अपने चेहरे पर उदासी के भाव लाए और गिड़गिड़ाते हुए कहा, देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बहुत मुश्किल से अपनी बीवी बच्चों का पेट पाल पाता हूँ। ऐसे में आप ही बताइए कि अपनी भांजी और बहन की जिम्मेदारी मैं कैसे उठाता। ठीक है, उन्हें जाने देते हैं, लेकिन आपकी माँ का क्या, आप तो उन्हें भी अपने पास नहीं रखना चाहते, आहान ने कोल्ड वॉइस में कहा। उसका चेहरा देखकर ही उसके मामा को घबराहट हो रही थी। चाहत के मामा ने आहान के सामने लाचारी से कहा, मेरी माँ चोरी छुपे हमारे पैसे मेरी बहन को मदद के लिए भेजती थी। मेरे घर में ऐसे ही पैसों की तंगी थी, ऊपर से माँ के इस तरह चोरी करने की आदत से मैं और मुसीबत में आ गया था, मजबूरी में मुझे उन्हें यहाँ भेजना पड़ा। चाहत के मामा के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर आहान समझ गया था कि वो झूठ बोल रहा है। उसने उसके मामा की कॉलर पकड़कर कहा, मुझे अच्छे से पता है तू कितना कमाता है और कहाँ कितना लगता है, अगर तेरी बात में 1% भी झूठा निकला तो 1 पैसा कमाने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। आहान के धमकी देने पर वो डर गया और उसके कदमों में गिरकर रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये सब जानबूझकर नहीं करना चाहता था, मेरी पत्नी एक अच्छी औरत नहीं है। आहान ने उसकी कॉलर छोड़ी और उसे दूर फेंकते हुए कहा, अब मेरी बात गौर से सुन, तू अपनी माँ को यहाँ से लेकर जाएगा, बदले में हर महीने मैं तेरे अकाउंट में 50,000 रुपये भेजूंगा, जो तेरे परिवार और उनकी अच्छी देखरेख के लिए काफ़ी होंगे। मेरा एक आदमी हमेशा तेरे पीछे रहेगा, अगर तूने उन्हें बिल्कुल भी तकलीफ देने की कोशिश की तो उस वक्त से ही मैं वो पैसे भेजने बंद कर दूंगा। 50,000 रुपये चाहत के मामा के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा थे, वो वैसे भी महीने के 15,000 से ज़्यादा नहीं कमाता था, इसलिए वो तुरंत मान गया। फिर उसने कुछ देर सोचने के बाद डरते हुए पूछा, क्या इसके लिए मुझे चाहत को भी अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा? उसने आहान का चेहरा देखकर घबराते हुए बोला, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, मैं ये कह रहा था कि अगर चाहत भी मेरे साथ जा रही है तो आप थोड़े और पैसे भेज देते तो अच्छा होता। आहान ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, मेरी डॉल तेरे साथ कहीं नहीं जाएगी, एक बात याद रखना, जाने से पहले तुम्हें उसके साथ इतना बुरा बर्ताव करना है कि वो गलती से भी तुम्हारी तरफ मुड़कर न देखें। तुम्हें अपनी माँ को जबरदस्ती यहाँ से ले जाना होगा और चाहत के साथ सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। आहान ने अभी अभी जो कहा था उसे सुनकर चाहत के मामा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा था कि वो चाहत और पार्वती जी की फिक्र कर रहा है, लेकिन अगले ही पल आहान ने जो कहा था उसके बाद उसे आहान के इरादों पर शक होने लगा। लेकिन चाहत, चाहत का मामा बोल रहा था तभी आहान ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, एक बात और, तुझे मुझसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं है, जितना कहा है उतना कर। आहान के मामा ने उसकी बात पर हामी भरी। आहान ने तुरंत उसे कुछ पैसे दे दिए थे। उसे सिर्फ पैसों से मतलब था और पैसे मिलते ही वो अपनी माँ के पास आहान के बताए हिसाब से ड्रामा करने चला गया। उसके जाते ही आहान ने अपने मन में कहा, सॉरी बट नॉट सॉरी डॉल, जानता हूँ तुम्हारा आखिरी सहारा भी छीन रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी पहली और आखिरी उम्मीद सिर्फ मैं ही रहूँ। तुम्हारे हर खुशी और गम में तुम्हारा इकलौता सहारा सिर्फ मैं ही रहूँगा। बोलते हुए आहान की नज़र श्रद्धा की तरफ गई, जो चाहत के लिए खाना लेकर जा रही थी। श्रद्धा को देखते ही आहान की नज़रें सर्द हो गईं। पार्वती जी को चाहत से दूर करने के लिए आहान को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसने अच्छा खासा प्लान भी बना दिया था, लेकिन अब उसे श्रद्धा को भी रास्ते से हटाना था, जो कि इतना आसान नहीं रहने वाला था। आहान ने किसी को कॉल पर कनेक्ट किया और फिर कहा, तुम्हें एक लड़की की फोटो और कुछ डिटेल भेज रहा हूँ, 2 घंटे में मुझे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। साथ ही मुझे ये भी पता करना है कि अगर वो लड़की अचानक से गायब हो जाए तो क्या किसी को फर्क पड़ेगा। सामने कॉल पर मौजूद आदमी को इंस्ट्रक्शन देने के बाद आहान ने कॉल कट कर दिया। उसके दिमाग में क्या चल रहा था इस वक्त वही जानता था, लेकिन एक बात साफ थी कि उसके इरादे अच्छे नहीं थे। चाहत को अपना बनाने के लिए आहान अब किसी भी हद तक जा सकता था।